आयु हॉस्पिटल से लेट आई थी, इस वजह से उसके दादा मिस्टर ज्ञान सिंह ओबेरॉय ने उसे पनिशमेंट के तौर पर घर से निकाल दिया था। जब भी आयु उनकी कोई बात नहीं मानती थी तो वो यही करते थे और मजबूरन आयु को गाड़ी में रहना पड़ता था। आयु घर के बाहर आई तो बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, ऊपर से उसने अंदर अपना ओवरकोट भी निकाल दिया था। आयु ने गाड़ी का बैक डोर खोला और जल्दी से अंदर आ गई। उसने हीटर ऑन कर लिया था। वो धीरे से बोली, दादू बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद करते हैं, उन्हें समझ नहीं होगी मेरी बात कि मैं पूरे टाइम पहले की तरह उनके साथ नहीं रह सकती। अजीब मुसीबत है, दुनिया के पोजेसिव मेन्स मेरी लाइफ में आने थे। सोचा था इतना थकने के बाद आराम से रूम में सोऊंगी, लेकिन नहीं, मैं भी आप ही की पोती हूँ दादू, सुबह आपसे इसका बदला लेकर रहूंगी। आयु ने सीट को स्ट्रेच किया और फिर कंफर्टेबल होकर सो गई। थकी होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई थी। दूसरी तरफ लक्षित को घर आए हुए सिर्फ एक घंटा ही हुआ था कि हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आने की वजह से उसे फिर से वहां के लिए निकलना पड़ा। लक्षित जब अपनी गाड़ी लेने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था तो उसने आयु की गाड़ी की लाइट ऑन देखी। लक्षित आयु की गाड़ी की तरफ गया। उसने विंडो से झुककर देखा तो आयु गाड़ी में सोई हुई थी। ठंड होने की वजह से वो खुद ने ही सिमट रही थी। उसे इस तरह देखकर लक्षित को हंसी आने लगी। वो उसी अंदाज में बोला, लगता है मिस्टर ओबेरॉय ने फिर से मैडम को घर से निकाल दिया। लक्षित ने दरवाजे पर हाथ लगाया। आयु ने डोर लॉक नहीं किया था इसलिए वो खुल गया। लक्षित अंदर गया और उसने आयु को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तभी आयु नींद में बड़बड़ाने लगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया आरफ खुराना, जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। लक्षित को उसकी बात समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना समझ गया कि आयु को नींद में बोलने की आदत है। वो धीरे से बोला, तो मैडम को पैरासोमनिया भी है, लेकिन हेट यू किसे बोल रही होगी? मुझे क्या, किसी को भी बोले, जिसे भी है बोल रही है पक्का वो भी इस वक्त इसे यही कह रहा होगा, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी होती हैं। लक्षित आयु को लेकर अपने घर के गेस्ट रूम में गया और उसे कंफर्टेबल पोजीशन में सुला दिया। उसने रूम का टेम्परेचर हाई किया और आयु को एक पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। वहां से जाने से पहले लक्षित ने एक नोट लिखकर घड़ी पर चिपका दिया ताकि अगली सुबह आयु उठे तो उसे गलत ना समझे। आयु को वहीं पर छोड़कर लक्षित हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अगली सुबह आर्या उठा तो उसने पाया कि आरव उससे चिपक कर सोया हुआ था। वो स्माइल करते हुए आरव को देख रहा था और फिर उसने उसके नोज पर हल्का सा किस किया। फिर आर्या गौर से आरव का चेहरा देखने लगा। उसने धीरे से कहा, हर रात मेरी मॉम को मिस करते हो आप, लेकिन उन्हें लेकर क्यों नहीं आते हो? मुझे उन्हें देखना है। आप जैसे मुझे हक करके सोते हो वैसे मुझे उन्हें हक करके सोना है डैड। आर्या आगे कुछ कहता उससे पहले अलार्म क्लॉक बजने लगी। आर्या जानता था कि अलार्म बजने के बाद आरव उठ जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें वापस बंद कर ली और ऐसे सो गया जैसे नींद में हो। आरव ने अलार्म बंद की और उठ गया। उसने आर्या के फोरहेड पर किस किया और उसे जागते हुए कहा, चलो उठ जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करके आऊं, तो आज से मैं ही तुम्हें स्कूल ड्रॉप करूंगा बेबी। आर्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन्हें हल्के से रब करने लगा ताकि आरव को लगे कि वो नींद से उठा है। उसने आरव की बात पर हामी भरी। आयु ना होने की वजह से आर्या थोड़ा जिद्दी था और आरव भी उसकी बात को नहीं टालता था। हर सुबह आरव को ही उसे तैयार करना पड़ता था। आरव ने आर्या को अपनी गोद में उठाया और उसे टूथब्रश देते हुए कहा, सही से करना, मैं 5 मिनट में तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। आर्या कुछ नहीं बोला। आरव कपड़े लेकर वापस आया तब तक वो ब्रश को हाथ में पकड़े वैसे ही खड़ा हुआ था। आरव इरिटेट होकर बोला, कम ऑन यार, यू आर अ मैन, इतना काम तो तुम खुद ही कर सकते हो। कम ऑन डैड, आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ किड, का आपको ही करवाना होगा, आर्या उसको घूरते हुए बोला। आरव ने इरिटेटिंग वे में अपनी आईज रोल की और आर्या को गोद में उठाया। वो उसे टूथब्रश करवाने लगा। उसके बाद उसे बाथरूम में छोड़ने के बाद वो बाहर अपने कपड़े सिलेक्ट करने लगा। आर्या के फ्रेश होने के बाद में आरव ने उसे नहलाया और फिर स्कूल जाने के लिए तैयार कर दिया था। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी नानी बनकर रह गया हूँ। नीचे दादी के पास पहुँचो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, आरव ने आर्या को तैयार करने के बाद कहा। दादी ने मना किया है कि सीढ़ियों से दौड़कर मत उतरा करो, पर मुझसे खुद से कंट्रोल ही नहीं होता, मैं बिना दौड़े नहीं उतर सकता, तो आपको ही मुझे छोड़कर आना पड़ेगा, आर्या कंधे उचकाकर बोला। आरव ने आर्या को गोद में उठाया और उसे नीचे ले जाकर छोड़ दिया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे आर्या पर गुस्सा आ रहा था। आर्या को नीचे छोड़ने के बाद आरव रूम में आया और आते ही वो इरिटेट होकर जोर से चिल्लाया, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता, ना रात को काम हो पाता है और ना ही अपना गुस्सा उतारने के लिए ड्रिंक कर सकता हूँ,
सुबह सुबह मुझे फ्रेश एयर लेनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, लेकिन नहीं, पिछले 2 साल से सुबह उठकर मैं इसे तैयार कर रहा हूँ, आरव चिढ़कर बोला और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। वहीं नीचे कबीर इस वक्त किसी काम से खुराना मेंशन आया हुआ था। अब वो युवानी के साथ अलग घर में रहता था। जैसे ही उसने आर्या को देखा, उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। गौरवी जी ने कबीर की स्माइल को नोटिस किया और फिर उसके पास जाकर धीरे से कहा, इसके लिए तुम्हें जितना थैंक्स कहा जाए उतना कम है। अगर तुम उस दिन वहां वापस नहीं गए होते तो हमें हमारा बच्चा कभी नहीं मिलता। आई विश कि उस दिन आर्या के साथ साथ आर्या भी मिल जाती, बोलते हुए गौरवी जी इमोशनल होने लगी। आर्या दौड़कर उन दोनों के पास गया। उसे देखकर गौरवी जी ने अपने आंसू साफ कर लिए। आर्या जाकर कबीर की गोद में चढ़ गया और उसके गाल पर किस करके बोला, आज डैड मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे अंकल, फिर मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैं अपने मॉम डैड के साथ स्कूल नहीं आता। कबीर ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। वहीं गौरवी जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। वो धीरे से बोली, आर्या बड़ा हो रहा है और थोड़े दिनों में इतना समझदार हो जाएगा कि उसे अपनी मॉम चाहिए होगी। वो वहां खड़े आपस में बातें करने में लगे थे, तभी वहां माहिरा आई। कल रात अचानक आरव उसे अकेले छोड़कर आ गया था। ऊपर से फैज ने आयु के बारे में भी बताया था। माहिरा के दिल में ये डर सता रहा था कि कहीं फैज ने आरव को ये तो नहीं बता दिया कि आयु को दूर करने में वो भी उसके साथ थी। सुबह सुबह उसे वहां देखकर किसी को अच्छा नहीं लगा, खासकर आर्या को। वो कबीर के सीने से चिपक गया और धीरे से कहा, ये मुझे मेरे कार्टून कैरेक्टर की विच जैसे नजर आती है। अंकल, क्या कोई तरीका नहीं है जो इससे पीछा छुड़ाया जा सके? कोई बात नहीं, हम अंदर चलते हैं, फिर आपको इस विच को नहीं देखना पड़ेगा। बाकी सही बताऊं तो इससे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका नहीं है, कबीर ने धीरे से जवाब दिया और आर्या को अंदर ले जाने लगा। माहिरा का बर्ताव आर्या के साथ अच्छा था, क्योंकि वो आरव का दिल जीतना चाहती थी। वो आर्या के पास आने लगी, तभी आर्या कबीर से बोला, अंकल मुझे बहुत जोर से सूसू आ रही है, जल्दी लेकर चलो।
हाँ बस 2 मिनट बेटा, कबीर बोला और उसे वहां से ले गया। आर्या की इस हरकत पर माहिरा अपने मन में बड़बड़ाकर बोली, बिल्कुल अपने डैड पर गया है, दूर जाने के इसके पास भी 100 बहाने होते हैं। गौरवी जी भी माहिरा को देखकर दूसरी तरफ चली गई, तो वहीं माहिरा के पास अकेले बैठकर आरव का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। काफी देर वेट करने के बाद भी आरव नहीं आया तो माहिरा उसके कमरे में चली गई, ये जानते हुए भी आरव को किसी और का अपने रूम में आना पसंद नहीं था।